अगला सवाल है कि जब ये सब सच है, मानते भी हैं दीन सिरात अल मुस्तकीम, ये भी पता अल्लाह से है, तो फिर क्यों नहीं चलते अक्सर लोग? भई आपको सब्जी चाहिए, कह रही हैं सब्जी चाहिए सब्जी चाहिए सब्जी चाहिए सब्जी चाहिए, तो भई आप क्यों नहीं ले आती? आप कहती हैं जी मुझे कपड़े चाहिए कपड़े चाहिए, तो फिर क्यों नहीं ले आती कपड़े? क्वेश्चन है ना। इतनी बातों से आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हर बंदे के अंदर हिदायत की अर्ज है। जैसे भूख लगेगी ना, कल मैंने वो सिस्टर से भी यही बात की कि देखो अभी भूख लगी है तो खाना खाया ना, तो हर एक को भूख लगती है, प्यास लगती है तो पानी है, इस तरह हम सबको हिदायत की भूख है, तुम्हें भी है। मैंने कहा मेरी बहन तुम्हें भी है, लेकिन तुमने अपने घर वालों को चूंकि शुरू से बुत को पूछते देखा है, तो तुम्हें लगता है कि इस बुत से तुम्हें गाइडलाइन मिलेगी। तो अब अगली आयत का सवाल लिख ले कि है तलब चाहिए भी है, तो फिर अक्सर लोग क्यों नहीं ले पाते? इसको अब चलते हैं आयत 36 की रोशनी में। वमा यत्तबियु अक्सरुहुम इल्लज़न्ना, और नहीं पैरवी कर रहे इनमें से अक्सर लोग मगर गुमान की। ये जन का लफ्ज़ नोट कर लें, ये है अक्सरियत की मुश्किल। पिछली आयत में क्या पढ़ा कि जिसने हिदायत की तरफ बुलाया उसकी तरफ चलना चाहिए ना। देखिए ऊपर हमने पढ़ा ना, अफ़ा में यहदी इलल हक या हक को युत्तबा, राइट? सवाल क्या था कि जो हिदायत की तरफ बुलाए उसके पीछे चलना चाहिए ना, तो हिदायत मिल जाएगी। लेकिन अक्सर क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि वो हिदायत या हिदायत देने वाले के पीछे चलने की बजाय जन के पीछे चलते हैं। हालांकि जन की क्या हैसियत है, ये क्या होता है, इसको भी हम खोलते हैं। इन जन ला युग्नी मिनल हक की शैया, हालांकि ये गुमान किसी भी दर्जे में इंसान को हक से किफायत करने वाला नहीं बना सकते। यानी आप कहें कि गुमान हक का अल्टरनेट कभी नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून, कोई बात नहीं ना मानो तुम हक वाले को, अपने गुमान पे चलो अपनी बातों पे चलो, तो फिर याद रखो कि अल्लाह को तुम्हारे सारे कामों की खबर है। यहाँ आप जन को खोलते हैं। देखिए जन का लफ्ज़ पीछे भी बहुत जगह आया है, ज़ोए नून नून है ना, आपको बताया था कि ये अज़दाद में से है। अज़दाद किसको कहते हैं? एक ही वक्त में अपोजिट, ड्यूल मीनिंग है। यानी जैसे आप कहते हैं ना सर्दी, कभी कभी ये सर्दी का मानी देगा तो किसी वक्त ये गर्मी का भी देगा। तो जन जो है ना कभी कभी यकीन के माने में आता है। इसके चार मानी नोट कीजिए। नंबर एक यकीन, नंबर दो शक, बिल्कुल अपोजिट मानी। जब यकीन आ जाता है तो शक चला जाता है ना, और शक आ जाता है तो यकीन चला जाता है। तो एक इसका मानी है यकीन, दूसरा इसका मानी है शक, तीसरा इसका मानी है तोहमत, ब्लेमिंग। तोहमतें लगती रहती हैं, लगाते रहते हैं लोग एक दूसरे पे। और चौथा मानी के वहमो गुमान। यहाँ चौथा मानी है कि अक्सर लोग हक के पीछे चलने की बजाय वहमी दुनिया में रहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं जन का जब इंग्लिश बोलूंगी ना तो आपको ये सारी मुश्किल बातें हजम हो जाएंगी इंशाल्लाह। आई थिंक बहुत सारे लोग हिदायत का भी मियार आई थिंक के मुताबिक कर देते हैं। आई थिंक ये नहीं होगा कि अल्लाह सबको आग में डाले। आई डोंट थिंक सो कि आज के दौर में कोई सूद पे पकड़ होगी। हिदायत के मुकाबले में जब बंदा अपनी थॉट ले आता है, अपनी बात ले आता है, तो समझ लीजिए कि जिंदगी दूसरे रास्ते पे चली जाती है। बात समझे? देखिए एक चीज़ है, आपको केक बनाना है, रेसिपी आपके सामने लिखी हुई है, उसको पढ़ते जाएं फॉलो करते जाएं, बनाते रहेंगे केक बन जाएगा ना। चीनी भी है उसके अंदर, अंडे भी हैं, दूध भी है, फ्लावर भी है, बटर भी है। आप डाल रहे हैं केक में ये सब चीज़ें, उसका टेम्परेचर सेट करते हैं, नतीजा क्या निकलेगा? बेहतरीन केक। तो आप कह सकते हैं कि आपने केक बनाने वाले की हिदायत पे अमल किया। अब क्या बना तो आप केक रहे हैं, रेसिपी सामने खुली है। अब दो चीज़ें करते हैं, पहले एक करके दिखाती हूँ। आप चीज़ें सारी वही डालते हैं, उसने क्या कहा, सबसे पहले अंडे बीट करो और तुम इसे एक केक में 6 अंडे डालो। आप कहते हैं आई थिंक सो कि 6 अंडे जो है ना ये तो टू मच है, मैं एक अंडा डालूंगी। ओके डाल दिया। फिर उसके बाद उसने लिखा था उसमें कि जी इसमें 1 कप फ्लावर डाल दो। आप कहते हैं नहीं 1 कप तो नहीं, आई थिंक कि 2 कप डाल दो। दूध 2 कप लिखे थे, आप उसकी जगह 4 कप डाल दें। आगे आपको समझ गए। चीनी लिखी थी 1 कप, आप 4 कप डाल दें, मुझे बताइए कि आपके आई थिंक के बाद जो बनेगा वो क्या होगा। घर वालों का सब्र, पत्थर का पत्थर केक बनेगा ना। वो कहते हैं कि 45 मिनट पे इसको लगा दो 250 पे, 280 पे, आप कहते हैं नहीं आई थिंक सो के इसको जो है मैं 220 पे लगाती हूँ और 1 घंटा लगाती हूँ। अब एक तो ये डिसऑर्डर हुआ ना, ये समझने की बात है। चीज़ें सारी वही थी। ये किन लोगों की मिसाल है ये अब लिखिए, क्योंकि हम केक नहीं इस वक्त सीख रहे, हम हिदायत का सफ़र सीख रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो दीन के काम सारे करते हैं, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, जो भी, लेकिन रेशो एंड प्रोपोर्शन बदल देते हैं। हुकूकुल्ला और हुकूकुल इबाद के बीच में उनका बैलेंस नहीं रहता, इम्बैलेंस लोग हैं। अंडे कम की जगह ज़्यादा है तो झुक जाते हैं। हुकूकुल्ला के नाम पर हुकूकुल इबाद छोड़े में, और हुकूकुल इबाद के नाम पे हुकूकुल्ला छोड़े में, हत्ता के लोगों को भी अल्लाह का हक दे देते हैं। और कुछ लोग तो खुश होते ही नहीं हैं जब तक आप उनको अल्लाह का भी हक ना दें। वो कहेंगे नहीं मैं फिर तुम्हारी दोस्त ही नहीं हूँ, पहले अल्लाह को नाराज़ करो फिर मैं मानूंगी। कुछ नहीं होता, मैं कल अल्लाह के सामने खड़ी हो जाऊँगी कि इसने मेरी खुशी के लिए यह किया था। ठीक है, अब ये तो थी पहले बिगाड़ की मिसाल, इतनी भी वाजे। मैं अपने आप को पूछूं, क्या मैंने दीन के रेशो पर पोषण को बिगाड़ा हुआ तो नहीं है? इसी में कुछ लोग रहबानियत पे चले गए और कुछ बिल्कुल ही दूसरी डगर पे चले गए। एक दूसरा बिगाड़ भी है केक बनाने में, आई थिंक के नाम पे। उसमें क्या था, अंडे, चीनी, दूध, सब कुछ। और जो सिस्टर बना रही हैं वो कहती हैं कि इसके अंदर मुझे 2 चम्मच नमक भी डालना है। आप कहते हैं कि देखो रेसिपी में नहीं लिखा, तो वो कहते हैं मना भी तो नहीं किया, मना भी तो नहीं किया। आप कहते हैं मैं क्या बोलूँ, ठीक है डाल दो, मैं नमक भी डाल दिया। थोड़ी देर के बाद वो कहती हैं कि मैं इसमें गरम मसाले की 2 चमचे डालती हूँ। अगली बातें आप समझ गया ना। आप वो कहती हैं कि मना नहीं, आई थिंक कि इससे केक स्पाइसी होगा, क्रिस्पी होगा, पाकिस्तानी केक होगा, केक नहीं बनेगा तो ये पापड़ तो बन ही जाएंगे ना। अब वो आई थिंक के नाम पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो केक नहीं बनेगा। ये है मिसाल उन लोगों की जो दीन में मर्च मसाले डालते हैं। क्या हरज है, कुछ कुरान ही तो पढ़ लेंगे ना। क्या हरज है, नबी का नाम ही हम ले रहे हैं ना। क्या हरज है, खाना ही तो खा रहे हैं, मुर्दे के घर से खाना खुवाना तो बड़ा स्वभाव है। तो जब जन आता है ना, आप लिख लीजिए, अब बात आगे मुख्तसर करती हूँ, कि ज़िंदगी गुजारने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता अल्लाह का दिया हुआ, अलहक अलहदी, वो हक का रास्ता। दूसरा रास्ता है इंसानों का बना हुआ, सोसाइटीज़ का, ख़ानदान, मुआशरे, बीवी, बच्चे, ये रास्ता गुमान का। बिल्कुल अपने माइंड में एक मैप बनाएं, बल्कि नोट्स में बनाएं। आप खड़ी हैं, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता अल्लाह का बताया हुआ, काल अल्लाह व काल रसूल, आगे उसके लिखे हक, इधर जाना है, उसके आगे जन्नत है, वल्लाहु यदूकुम इला दारुस्सलाम। आप कहते हैं अच्छा इसमें तो बड़ी मुश्किल है, बड़ा नैरो है, बड़ा तंग है, मैं इधर देखूं, दूसरी तरफ देखते हैं, वाह मज़े का रास्ता, फन फन फन, और सब कुछ सोसाइटी, लोग भी खुश, तारीफ़ें माशाल्लाह, और 100 तारीफ़ें करेंगे आपकी। लेकिन उसके आगे जाके देख लीजिए, ये गुमान है। आपने सोचा कि मैं ये लेफ्ट साइड का रास्ता लूँगी लेकिन पहुँच मैं जन्नत में जाऊँगी, ये आपका गुमान है। आज बहुत सारे लोग चल नहीं बल्कि दौड़ रहे हैं भगटुट जहन्नम के रास्तों पे, और गुमान क्या है कि हम जन्नत में जाएंगे। तो याद रखिए कि जन्नत और जहन्नम किसी पार्किंग लॉट का राइट और लेफ्ट नहीं है, कि कोई बात नहीं राइट भी ले लिया तो भी पार्किंग लॉट है और लेफ्ट भी ले लिया तो भी पार्किंग लॉट है, बल्कि जन्नत और जहन्नम एक ऊपर है। अगर आप मेरे हाथ से देखें, जन्नत का रास्ता स्लोप है, ऊपर जाता है, ये हिली है, इसमें बहुत फ्रिक्शन है। आप ऊपर जाएंगे आपको अपने आप को खींचना पड़ेगा, पुल है वो, ग्रेविटी जो है वो माशरे की पुल है। दिल आपका भी करता है क्योंकि आप इंसान हैं, पत्थर तो आप भी कोई नहीं है। अभी नहीं नहीं तो ये चीज़ें छूट रही हैं, दिल तो बार बार उधर घुसरता है। लेकिन आप 4 व्हील गाड़ी लेते हैं, मजबूत सीट बेल्ट बांध लेते हैं, फोकस्ड हैं, आप पहाड़ी इलाके पर चढ़े चढ़े ऊपर, जन्नत है ये, सभी लोग जन्नत आपका। और अगर आपने जन गुमान सोसाइटी है, सीधा नीचे, आप मिडल में ना, जन्नत ऊपर है और जहन्नम नीचे है। और हकीकत में भी ऐसा ही है, हदीस में कि जन्नत आसमानों पे आज भी और जहीम नीचे, सिज्जीन और इलीजीन, सूरह फजर में पढ़ लें या सूरह मुतफ़फ़िफ़ीन में, वमा अदरा कमा सिजीन और वमा अदरा कमा इलिजोन। तो ये रास्ता फिर मुझे खुद चेक करना है। जो नीचे वाला रास्ता होता है ना, ये लीस्ट रेजिस्टेंस है, राइट? आपने कभी गाड़ी चलाई होगी स्लोप में, तो नीचे जाते हुए तो बार दफ़ा मर्दों को मैंने देखा है कि न्यूट्रल करके बस स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं, खुद बहुत घूमते हैं। आप नर्व्स पे से पाँव बस उठा लें, ख्वाहिशों की रुकावट जो है ना उस पर पाँव उठाए, ब्रेक उठा लें अपनी ज़िंदगी से, सीधे खैर से जहन्नुम में पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ते की रेजिस्टेंस नहीं है। और ये लीस्ट रेजिस्टेंस है। इंग्लिश का एक आपने सुनना होगा जुमला कि दरिया और इंसान कब टेढ़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा व्हेन दे टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। दरिया जा रहा था, सीधा जाना है, आगे पत्थर आ गया, अब वो पत्थर से टकराता नहीं, रास्ता बदल देता है, तो दरिया का रुख बदल जाता है ना। तो जब मुश्किलों को देखकर हम रास्ते पलटते हैं ना कि मेरे रास्ते में रेजिस्टेंस ना हो, तो फिर आपकी सलाहियतें कभी भी नहीं उभरेंगी। अल्लाह ने आपको करना है। हजरत बिलाल का कॉल पड़ा हुआ याद आ गया कि उन्होंने कहा जब लोग उनको तकलीफ़ें देते थे दीन पे आने पे, तो बेचारों को तरस आता था लोगों पे। एक दफ़ा उनका जो मालिक था उमैया, उसने इनकी माँ को शिकायत लगाई कि अपने बेटे को समझाओ, इतनी मार खाता है इसके बावजूद भी आहद आहद करता है। तो माँ भी मुसलमान थी दिल से, लेकिन ईमान छुपाया हुआ था। बेटे के पास जाके कहती है कि बेटा तू क्यों मार खाता है, अल्लाह को तेरे दिल का हाल पता है, तू मान जा जो ये कहता है, क्योंकि ये गुलाम थे। तो फिर ये हंसने लगे, कहने लगे आज मुझे पता चला कि उमैया हार गया और मैं जीत गया हूँ। क्यों? कि अगर उमैया अंदर से टूटा हुआ ना होता, हारा ना होता, तो आज मेरी ही माँ को मेरे सामने सिफारशी बना के ना भेजता। और उनका एक कॉल आता कि कहते है तुम्हें घड़ा भी खरीदते हो तो ठोक ठोक के देखते हो ना कि कहीं इसमें झोल तो नहीं, यानी सुराख तो नहीं, तो क्या मेरा अल्लाह मुझे ठोक बजा के नहीं देखेगा? अम हसिब तुम अन तदखुलु الجنت ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم। क्या तुम ऐसे सोचते हो कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत ऐसे ही दे देनी है? तो ये मुझे और आपको सोचना है आज के बाद कि हमने दलील पर ज़िंदगी की बुनियाद रखी है या गुमान पर। ये ज़िंदगी के दो रास्ते हैं, पूरा मुआशरा गुमान पर चल रहा है। आई थिंक आई विल गो टू जन्ना, आई थिंक अल्लाह लव मी, आई थिंक बस देखना अल्लाह को मेरे पे प्यार आ जाना है। वो मेरी अम्मी की दुआएं भी तो मेरे साथ बहुत है ना, और मेरी दादी तो मुझे इतनी दुआएं देती थी। हम सब जन्नत के रास्ते पर सिर्फ आई थिंक पे जा रहे हैं, वल्लाह इल्ला माशाल्लाह। एक छोटी सी मिसाल अब ना दूं तो मुझे ऐसे लगता है मैंने हक नहीं दिया और बातें ये समझ नहीं किया। देखिए आप यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, कौन सा टिकट लेते हैं? कन्फर्म। वो कहते हैं आप चांस का ले लो। कितने लोग हैं जो बीवी बच्चों के साथ 8-10 सूट के साथ लेके जा रहे हैं और सिर्फ चांस के टिकट पे तैयारी करके एयरपोर्ट पहुंच जाए? कहते ना भी अल्लाह के बंदो, ना मिला तो क्या होगा, मिल गया तो क्या होगा। सिर्फ इधर से 8-7 घंटे की फ्लाइट पे हम कंफर्म टिकट लेते हैं। आई थिंक क्यों नहीं करते, आई थिंक आई विल गो। 3-4 माह पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, फलां डेट को बेटी आ रही है, फलां को बहन आ रही है, यही होता है ना। तो आखिरत को हमने क्यों सिर्फ चांस के टिकट पर रखा हुआ है? मैं कहती हूँ ये वो तड़प है जो बंदे को फिर दीन के बाद तो खुशी खुशी नहीं लगती। लोग खुश हो रहे होते हैं, आप अंदर से रो रहे होते हैं, क्या इनको नहीं पता इस खुशी के बाद इनको क्या तकलीफ आने वाली है, इसके जुर्म में इस मस्ती ने आखिर इनको दिखाना क्या। और आखिर में फिर जब चीखें निकलती हैं तो फिर हम कुछ और कहते हैं, किसी की नज़र लग गई, किसी की आह लग गई, किसी की बददुआ लग गई, कुछ जेलस हो गया। असल में अल्लाह हमें उस गुमान से निकाल रहा होता है, फिर अल्लाह दिखाता है, इंजेक्शन लगाता है कि देखो तुम किधर हो। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अपनी ज़िंदगी की बुनियाद स्ट्रॉन्ग बेस पे रखे। कभी गुमान पे आप अपनी बेटी नहीं दे देते किसी लड़के को, आई थिंक मेरा निकाह हो गया इससे, या आई थिंक पे चलती है ना दोस्तियाँ और लिविंग टुगेदर, ये पूरी कल्चर जो नहीं आई थिंक पे चलता है। आई थिंक ही इज़ माई फादर रियली। जब अल्लाह के नबी को इस्लाम मिला था उस दौर में, तो अरबों में नसब इतना बिगड़ चुका था कि जब किसी औरत के घर कोई बच्चा पैदा होता था तो खोजियों को बुलाते थे कि देखो किस में बच्चे के फीचर ज़्यादा है, ये बच्चा उसका होगा। इतना नसब ख़राब था कि आज आपको इस सोसाइटी में ये नहीं दिखता कि उन्होंने बाप का नाम ही निकाल दिया स्कूल के फॉर्म्स में से, कि अब क्या इसको शर्मिंदा करें कि तेरा बाप कौन है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ने हमें ये हक दिया, हम इसकी कदर करें। इसीलिए अब अगली आयतों में देखिए, आयत 37, वमा काना हाज़ल कुरान युफ्तरा मिन दूनिल्लाह। ये कुरान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको अल्लाह के सिवा कहीं और घड़ लिया हो, यानी ये घर बैठ के बातें नहीं घड़ी हुई नबी ने, ये खुद से फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं है, ये नेचुरल है। ये चीजें किसी ने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं की, बल्कि अल्लाह ने भेजी। देखिए, हम सब आर्टिफिशियल चीजें बना सकते हैं ना घरों में, लेकिन हम गाजर पैदा कर सकते हैं, हम ऑरेंज नेचुरल चीजें जो भी हैं, ऑरेंज देख लीजिए, मैंगो देख लीजिए, अनार देख लीजिए, ये क्या है, अल्लाह ने बनाया। आप उस अनार से आप बीसियों चीज़ें बनाएं, लेकिन क्या हम में से कोई सब मिलके एक अनार बना सकते हैं? ये है आयत कि अल्लाह ने ये कुरान बनाया, किसी बंदे की ताकत ही नहीं है किसको बनाए। कल जो स्टूडेंट शेयरिंग कर रही थी उसमें से एक की सुनी थी आपने, अपनी को बात सुना रही थी, तो कहती हैं कि मैं जब कुरान सुनने बैठती थी तो मैं सोचती थी कि उस्ताजा को ये बात किसने बताई मेरी, तो मेरी बात है तो वो कहाँ बैठी सुन रही होती, मुझे तो पता भी नहीं, और इन लोगों ने तो वैसे रिकॉर्डिंग से किए अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये कि हर बंदे को ये लगता है ये कुरान मेरी बात है। अल्लाह कहते हैं ये बंदा बोल ही नहीं सकता, ये रब को पता है कि किधर से ये आना है, ये नबी के पास की बात नहीं है, ये कुरान किसी इंसान के हाथों की चीज़ हो ही नहीं सकती, ये अल्लाह का कलाम है। जिस सीने में ये आ जाएगा ना, आप उसको डिस्कवर नहीं कर सकते, आप उसको कंकर नहीं कर सकते, दुनिया का कोई लालच और दुनिया का कोई डरावा उस बंदे को खरीद नहीं सकता। नबी को इतना सताया लोगों ने, क्या नबी बिके? तुम्हें खूबसूरत औरत से ब्याह देते हैं, तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, पैसे दे देते हैं, ये सब कुछ तो पहले ही था। अरब की सबसे खूबसूरत औरत खतीजा के नाम पे पहली जौजियत में थी, और सरदार है दो जहाँ तो वो पहले ही थे, उन्होंने क्या लेना था लोगों से, और लोग कोई देंगे भी क्या? लेकिन समझ नहीं आ सकती इंसान को जब तक वो बंदे के ऊपर ना बीते। कहते ना कि राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। ये इस हॉल में बैठ के जो आपको मुझे बात समझ आ रही है ना, आप घर जाके पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगी ये आयतें अपने शौहर को अपने भाई को सुनाने की, हर दो जुमलों के बाद कहेंगी मैं आपको वैसे नहीं बता पा रही जैसे मुझे पता चला, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। अयुफ्तरा मिन दूनिल्लाह वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैही। अब एक और चीज़ आ गई है, बल्कि ये तो तस्दीक करते हुए आया है उसकी जो उसके सामने है। वह तफसील अल किताब, और इसकी तमाम शरीयत की तफसील है। कौन सी किताब है? ला रईब फीह, जिसमें कोई शक ही नहीं है। किधर से? मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है, जहानों के बादशाह की तरफ से। यहाँ भी अब देखिए दो किताब की खूबियाँ आ गई, नंबर एक तस्दीक और नंबर दो तफसील। पीछे हिदायत की बात थी कि कुरान क्या है, हिदायत, हिदायत गाइडेंस। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये किताब तस्दीक करती है, वेरिफिकेशन करती है। किस चीज़ की वेरिफिकेशन? अल्लज़ी बैन यदैही, जो इसके आगे मुफसरीन कहते हैं कि बैन यदैही से क्या मुराद है, तो सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये असल में वही फ्रिक्शन का दौर है ना, नबी पे इल्ज़ाम लग रहे थे, कुरान नहीं मानेंगे तुझे, नबी नहीं मानेंगे, वलीद बिन मुगीरा नबी होता, दो बड़ों में से कोई एक होता, दिस एंड दैट। अल्लाह कहते हैं ये किताब अपने सामने, यानी इस शख्स की नबी होने की दलील है। तुम इतने जुबानदान होने के बावजूद, अदीब शायर फुका, तुम ये कलाम नहीं पेश कर सके। तो ये एक उम्मी जिसकी माँ भी चंद साल में फौत हो गई थी, जिसके बाप ने उसको देखा भी नहीं, वो जब इतने मोतियों जैसी आयतें दे रहा है, तो मान जाओ तस्दीक करती है किताब कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है। कितनी बड़ी बात है। इसी तरह तस्दीक में एक दूसरा मानी क्या आता है? आने वाले वाक्यात की तस्दीक। सूरत रूम में हम पढ़ेंगे, कुरान पाक में पहले से होने वाले वाक्यात की भी खबरें दी गई थी, जिसमें रोम की फतह की बात थी, वहाँ बताऊंगी जब वो फतह हुई तो वो बात सच हो गई। तो दूसरा क्या, कुरान में आने वाले दौर की जो बातें हैं ना, जो ही वो आती हैं कुरान सच हो रहा है। समझ गया ना ये बात? ये आगे सूरह रात के आखिर में भी आएगी, जैसे कुछ साइंसी हकायक का भी जिक्र है कुरान में, जैसे बिग बैंग है, बैंक कह लें, या आप कह लीजिए कि हम ज़मीन को किनारों से घटाते जा रहे हैं, श्रिंक हो रही है। आज सब साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन पे पानी बढ़ता जा रहा है, खुश्की कम है, तो इस तरह की तस्दीकात भी हैं। और तीसरा माने लिख लीजिए अल्लज़ी बैना यदई से पिछली किताबें हैं, ये तो बहुत जगह बात हुई, मुसद्दिक लिमा बैना यदई ही, तो कुरान अपने से पहली किताबों की तस्दीक करता है। व तफसील लिकुल्ली शैइन, दूसरी खूबी देखिए कुरान की क्या, व तफसील, तफसील है किसकी, अल किताब की। الکتاب سے کیا مراد ہے؟ پچھلی تمام شریعتیں، پچھلے نبیوں کو جو بھی شریعتیں ملی تھیں نا، وہ ٹائم باؤنڈ تھیں، کچھ رہیں، کچھ بعد میں بدلتی گئیں، کچھ اسی طرح ادھر سے ادھر ہوتی گئیں۔ تو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے کھول کھول کے باتیں بیان کر دیں۔ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوش کر رہے اس آیت میں کہ تمہیں اس کتاب سے صرف ہدایت ہی نہیں مل رہی، اس بات کا یقین بھی مل رہا ہے کہ یہ کتاب باقی تمام علوم سے اوپر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دین کے نام پہ بھی تم بہت کچھ کرتے ہیں نا، لیکن جو قرآن کی تفسیر ہے اس کا مقابلہ 10 سال کی عالم کی ڈگری بھی نہیں کر سکتی اگر اس میں قرآن کی تفسیر نہیں ہے، اور شک سے پاک ہے۔ لیکن لوگوں کا حال دیکھیے، قدر نہیں کرتے نا، اب ان کی ناشکریوں کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں چیلنج دیتے ہیں، یہ چیلنج آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورت بقرہ میں، اب یہ دوسری جگہ آ رہا ہے، آگے خود میں بھی آئے گا، پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گا۔ آیت 38، ام یقولون افترح، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیغمبر نے خود گڑھ لیا ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں یہ نبی اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں، یہ ہمیں سناتے ہیں، یہ ہماری باتیں سناتے ہیں، ہمیں چوٹے لگاتے ہیں، ہم پہ ٹانٹ کرتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دو، قل، کہہ دیجئے، فاتو بسورت مثلہ، تم چلو ایک صورت ہی ایسی لے، تم بھی ایسی باتیں کر کے دکھا دو۔ نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، تو کہا کوئی بات نہیں، ودو من استطاع تم من دون اللہ، دعوت دے لو، جوائنٹ فیم کر لو، پروجیکٹ مل کے بنا لو، اور جس کو چاہتے ہو اللہ کے سوا اس کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ یاد آئی آیت سورت بقرہ؟ وہ کون سی سورت تھی؟ مدنی تھی۔ یہ سورت کون سی ہے؟ مکی ہے۔ تو مدنی سورتیں بعد میں ہیں، مکی سورت پہلے ہے۔ سورہ ہود میں 10 سورتوں کا آئے گا ذکر، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ آیت پہلے آئی تھی۔ مکہ میں جو اتنا جھٹلاتے تھے، یہ کیا کہتا ہے کیا؟ تو اللہ کہتا ہے تم بھی بنا لو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو اس دعوت سے روکنے کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہے، ہم بھی یہ پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایون من دون اللہ میں کون آتا ہے؟ اس نبی کو بھی لے جاؤ، تم سب بیٹھ کے ایسی ایک سورت بنا لو، اگر تم سچے ہو۔ کس میں؟ اس دعوے میں سچے ہو تو نہیں بنائیں گے۔ وہاں کیا کہا تھا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ تم نہیں کر سکو گے اور بالکل نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اوپن چیلنج کے بعد بھی یہ اس کو قبول نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ان کی جھٹلانے کی باتوں کو مزید کھولتے ہیں۔ آئی 39، بل کذبوا، نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے، یعنی انہوں نے ٹھان لیے کہ ہم نے اس کتاب کو نہیں ماننا۔ سیدھی سی بات ہے، ان کے دل مانتے ہیں، بس منہ سے نہ نکل گئی، اب یہ ہاں میں نہیں بدل رہی۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے۔ کس کی؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کی جس کے علم کا یہ احاطہ ہی نہیں کر سکے، یعنی بغیر سنے انہوں نے اس قرآن کی مخالفت کی ٹھان لیا۔ دیکھیے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے بھی نہیں تھے، لیکن آپ کے خلاف باتیں نکالتے تھے۔ کبھی کوئی قرآن کی دعوت یا قرآن کی دعوت دینے کے خلاف بات کرے تو آپ پوچھیں، آپ جاتی ہیں وہاں؟ کہ نہیں میں تو نہیں جاتی، ویسے فلاں سے سنا۔ تو آپ دعوت دیا کریں کہ آپ جائیں، آپ بیٹھیں ایک ہفتہ، جائیں بیٹھیں سنیں، پھر بتائیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں۔ جب تک سنا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس کی تکذیب کا، اس کے خلاف لوگوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا؟ عرب لوگ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی بہترین گواہی اس کے دشمن کی زبان سے ہوتی ہے، یا پھر اس کے گھر والوں کی زبان سے ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اب جو آپ کہیں گے نا اس کلاس کے بارے میں، اس میں کافی سچائی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سوچ پوری سیدھی ہو جائے، لیکن باہر والا 10 جملے بولے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ آپ کبھی اس ہال میں آ کے بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ توڑی اڑائی باتوں کو سن کے آپ نے کیا کیا؟ لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں باہر کر کے کہتے ہیں، وہ تو نبیوں کو نہیں مانتے جی، وہ تو درود نہیں پڑھتے، وہ تو یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ بھائی آپ آ کے دیکھ لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں بغیر علم کا احاطہ کیے یہ جھٹلا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہے کہ جس انسان سے کبھی آپ کا واسطہ نہ پڑا ہو اور آپ اس کی برائیاں کریں، رائٹ؟ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی تاویل بھی۔ سبحان اللہ، کیسے پیار سے اللہ کہتا ہے ابھی تو یہ اس قرآن کی اصل کو پا ہی نہیں سکے، جھٹلا کیسے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی انہوں نے چکھا نہیں ہے، ابھی ان کو پتہ ہی نہیں، یہ قرآن کے علوم کا ادراک نہیں کر سکے، یہ کتاب کی آگ لگا دیتا ہے بندے کے اندر، انہوں نے ابھی یہ چکھی نہیں ہے اس لیے جھٹلا رہے ہیں. جس دن آ کے بیٹھ جائیں گے ان کے اپنے دل گواہیاں دیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ باہر باہر کی باتیں ہیں، یہ دھمکی ہے، سچی بات ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میری پکڑ میں آ جاؤ گے پھر تمہیں لگ سمجھ جائے گی. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. یہ کوئی مکہ والے کیا ہیں، ان سے پہلے بہت بڑے بڑے طاغوت گزرے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لو کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا، کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو جھٹلایا اور اس پہ نہ چل سکے. لیکن یقین کریں یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کے اوپر دل نہیں کھولتے تو کب کھولیں گے.
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين